ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பஹலா ஸ்கந்த் தேர்வா அத்தியாய் ஸ்லோக் சங்கியா 21. இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஜான் மே பிரவேஷ் கர்னே சே பஹலே குரு ஆர் கவுரங்க சே கிருபா கி யாச்னா கர்த்தே ஹுயே மங்களாச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹே உஸ்கா பூரா பூரா லாப் பிராப்த ஹோ சகே ஜோ கி ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி பிராப்தி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜான திமிரந்தஸ்ய ஜானஞ்சனாசலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாஸம் ததோ ஜாயாமுதீரயே நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாக்வத சேவயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர பவதி நஷ்டிகே. ஆராத்யோ பகவான் ப்ரஜேஷதனய தத்தாம விருந்தாவனம் ரம்யா காசிதுபாசனா வ்ரஜவது வர்க்கேனயா கபிதா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரமாணமமலம் பிரேம துமர்த்தோ மஹ ஸ்ரீ சைதன்ய மஹாபிரபூர்மியதமிதம் தத்தாக்ரஹ நாபரஹ வன்ஷீ விபூஷிதகரா நவநீரதாபா பீதாம்பரதருணபிம்பஃபலதரோஷ்டாத் புர்ணேந்திரசுந்தரமுகாத் அரவிந்தநேத்ராத் க்ருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்வ அஹம் ந ஜானி. யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்திர ருத்ர மருதஹ ஸ்துவந்தி தீவ்யஸ்தவே வேதே சாங்கபத் க்ரமோபநிஷதே காயந்தி யம் சாமகா த்யானாவஸ்தித தத் கதீன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஸ்யந்தம் ந விதோ சுராசுரகணா தேவாய தஸ்மே நமஹ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधरम शिवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद 13वां अध्याय जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए श्लोक नंबर 21 में कहते हैं, पितृभ्रातृ सुहृत् पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरयाग्रस्त परगृहम् उपासते पितृभ्रातृ सुहृत् पुत्रा हतास्ति विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेह उपासते पितृभ्रातृ सुहृत् पुत्रा हतास्ति विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहम् उपासते। जब धृतराष्ट्र ने समझो ये कहा कि मैं धन दौलत छोड़ करके इससे चला जाऊं, तब पहले तो विदुर जी ने उससे कहा, येन चैवा विपन्नोयम् प्राणे प्रियतमाय रपि। तो आप ना धन दौलत की बात कर रहे हो, आपके जो इतने प्रियतम, प्राण को प्रियतम कहा कि जो बहुत ज्यादा आपको प्यारे हैं, सबको प्यारे होते हैं प्राण अपने, वो भी छोड़कर चला जाना पड़ता है, तो फिर धन दौलत की क्या बात करनी। और बाकी सब तो छूटने ही है, बल्कि आप तो सब, आपके तो सब छूट ही गए। पितृ, अब आप बताइए आपके पास क्या आपके पिताजी विचित्रवीर्य हैं? वो मर गए ना। पितृ तुम्हारा, आपके पितृ पिताजी मर गए। पितृ का मतलब होता है पिता या पितामह। तो यहाँ बता रहे भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था वो भी तो मर गए ना। भ्रातृ आपके भाई पांडु महाराज चले गए ना। सुहृद जो आपके हितैषी थे, सारे लोगों ने आपके लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पुत्रा आपके 100 पुत्र मारे गए। अब आप किसके लिए जीना चाह रहे हो? ना आपके पिता हैं, ना आपके भाई हैं, ना आपके शुभचिंतक हैं, ना आपके पुत्र हैं। हतास्ते विगतम वयम, वे सारे के सारे मर गए ना। मतलब पितृ भ्रातृ सुहृत् पुत्रा, यानी शुरू से लेकर आखिर तक जिन्होंने आपसे पहले जन्म लिया था वो भी मर गए, जिन्होंने आपके बाद में जन्म लिया था अर्थात आपके पुत्र इत्यादि वो भी मारे गए। तो आप समझते क्या हो कि बीच में आप क्या अमर रहेंगे? आप जरा विचार तो कीजिए। यहाँ देखते हैं हम संसार में कुछ लोग अपने ही हाथों अपने पिताजी को शमशान लेकर जाते हैं, कुछ अपने ही हाथों अपने पुत्रों को शमशान लेकर किसी को जाना पड़ता है। फिर भी आदमी संसार को भोगने में ही पड़ा रहता है। उसे ऐसा लगता है शायद मैं कभी नहीं मरूंगा। और धृतराष्ट्र तो ऐसे पिता हैं जिनकी आंखों के सामने ही उनके 100 पुत्र मारे गए, जिनके पितामह मारे गए, जिनके पिता मारे गए, मित्र मारे गए, सुहृद मारे गए, 100 पुत्र मारे गए। और वो धृतराष्ट्र जिस जो जन्म से अंधा है, बिना आंख के है, उसकी आसक्ति देखिए। वो जिसको कभी जिसने किसी को देखा नहीं है, किसी भौतिक वस्तु का जब किसी का दर्शन तक नहीं किया, उसकी आसक्ति इतनी है कि वो छोड़ के जाना नहीं चाहता, फिर आंख वाला कितना आसक्त होगा। वो व्यक्ति जो अपने बच्चों को बार बार देखते हैं, प्रेम करते हैं। धृतराष्ट्र ने तो कभी देखा ही नहीं, फिर भी वो इतना आसक्त है। वो पूछते थे दुर्योधन से, दुर्योधन से इतना स्नेह करते थे, इतना स्नेह करते थे कि वो कुछ भी बोलता था कि ये करना चाहिए। वो विचार नहीं करते थे कि क्या ये करना चाहिए या नहीं, ऐसे दुर्योधन से पूछते थे, दुर्योधन तुम्हारा क्या विचार है, बोलो अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन को ये डिसीजन लेना, दुर्योधन कहता था पिताजी आप पागल हो गए हो। जब जुए में छल हुआ था और पांडवों का सारा धन छीना गया था और द्रौपदी को अपमानित किया था, तो दुर्योधन अपने पिता को ऐसे कहते, आपको पता है आपको धन कितना मेहनत से कमाया जाता है, कितनी मेहनत से अर्जित किया था हम लोगों ने पांडवों का सारा धन, इतनी मेहनत से जुआ खेल के सारा धन हमने जीता और आपने वो सारा वापस लौटा दिया, ये आपने बहुत गलत किया पिताश्री। तब धृतराष्ट्र ऐसे नहीं बोलते थे कि हाँ मैंने सही किया या कुछ, ऐसे नहीं बोलते, बोलते थे अच्छा दुर्योधन अब तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। तब दुर्योधन ऐसे बोलते, मैं तो ये कहता हूँ पिताश्री फिर से जुआ खेला जाए। एक सेकंड के लिए विचार नहीं किया धृतराष्ट्र ने कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। उसी समय विदुर जी को भेजा धृतराष्ट्र ने कि जाओ जाओ उनको बुला के लाओ, इस बार हम उनका धन नहीं लेंगे, पत्नी को अपमानित नहीं करेंगे, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, ये जुआ की बस यही कसौटी होगी। मतलब यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जिसकी आंखें नहीं, जिसने अपने पुत्र को कभी देखा नहीं कि वो दिखता कैसा है, उसकी इतनी आसक्ति कि जब वो बोलता था तो अंधे की तरह अपनी अपनी अक्कल को भी ताला लगा कर बस केवल अपने पुत्र के स्नेह में वो अपराध करता रहता था। तो आज का व्यक्ति जो सारा दिन अपने बच्चों को देखता रहता है, प्यार करता रहता, उसकी कितनी आसक्ति होगी। मतलब जिनकी आंखें नहीं उनकी इतनी आसक्ति, और धृतराष्ट्र ने तो कभी फोटो तक नहीं देखा था उसका, जो देखते हैं उनका क्या हाल होगा। तो यहाँ इसीलिए कहते हैं विदुर जी, पितृ भ्रातृ सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वयम, कि आपके पुत्र आपके पितृ आपके सुहृत सब चले गए। और आगे कहते हैं कि आत्मा च जरया ग्रस्त, आत्मा यहाँ पर शरीर को कहा गया कि आपकी जो जवानी थी वो भी तो चली गई, आपकी उम्र भी तो अब खत्म हो गई। आत्मा जो जरा है, आपका शरीर कितना बूढ़ा हो गया है, शरीर में अब कोई शक्ति नहीं रही है, परंतु आसक्ति खत्म नहीं हुई। पर गेहम उपासते, पर का मतलब होता है दुश्मन। आप देखो तो सही आप कहाँ रह रहे हो, आप अपने दुश्मन के घर में रह रहे हो। ये वही पांडव हैं जिनको मारने का आपने हर असफल प्रयास किया, कहाँ आपने बख्शा उनको, वो जिनको आप मारना चाहते थे उनके घर पे रह रहे हो, या ये कहना चाहिए कि जिन्होंने आपके सारे पुत्रों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया उनके घर पे रह रहे हो, जिन लोगों ने आपके 100 पुत्रों को मार डाला, आपको शर्म आनी चाहिए यहाँ पर आप कैसे रह रहे हैं। अपने जीवन में आपने सदैव उन पांडवों को कष्ट दिया और आज उन्हीं के टुकड़ों पर पड़ रहे हैं, इस जीवन से तो मर जाना बेहतर है। पर अग्रह उपासते, ऐसे आप अपने शत्रुओं के साथ कैसे रह सकते हैं। चलिए चलिए निकलिए यहाँ से, संसार भी देखता होगा तो आपकी पीठ पीछे हंसी उड़ाता होगा कि उन्हीं के घर में बैठकर खा रहा है जिन्होंने इनके सारे पुत्रों को मार दिया। अनुवाद देखिए, आपके पिता भाई शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मृत हो चुके हैं और दूर चले गए हैं, आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद खींचा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण यह जान पाने के लिए कि उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है, अधिक बुद्धिमान होना चाहिए था। उनके पिता विचित्र वीर्या काफी पहले मर चुके थे। जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे, यह तो भीष्म देव की देखरेख तक तथा सदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी तरह पल सके। फिर उनका भाई पांडु भी मर गया। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सारे पौत्र अपने अन्य समस्त हितैषियों समेत तथा भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा अन्य बहुत से राजाओं तथा मित्रों समेत कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके थे। इस प्रकार उनके सारे जन तथा उनका सारा धन नष्ट हो चुका था और वे सब अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे, जिसे उन्होंने सभी प्रकार की मुसीबतों में डाल रखा था। इन सारी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि उनका जीवन दीर्घ हो जाए। धृतराष्ट्र को विदुर या बताना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न कोई मित्र, न कोई संताने, न पिता, न भाई, न राज्य या अन्य कोई कर सकता है। अतएव मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की सूचना निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि विदुर धृतराष्ट्र को उसकी गंभीर दशा के विषय में बता रहा है, क्योंकि वो बताना चाहता है कि पूरा जीवन आपने केवल अपराध ही अपराध किए। अपने अपराधी पुत्रों के साथ मिलकर आपने ऐसी सी योजना बनाई उन महात्मा पांडवों को कष्ट पहुंचाने के लिए, और आपने कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तो आप क्या समझते हैं कि कोई आपका साथ देगा, कोई आपको बचा सकेगा? जब भगवान की सहायता नहीं होती है, तो फिर संसार में कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। वास्तव में संरक्षण तो भगवान का होना चाहिए। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। आप हमें संसार में मनुष्य बनाकर भेजा गया है, तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान के संरक्षण को प्राप्त कर सके। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए मिला है। यह मनुष्य जीवन आहार निद्रा भय मैथुन करके जानवरों की तरह जीने के लिए नहीं मिला है। भगवान के साथ अपने बिछड़े हुए संबंध को पुनः निर्माण करने के लिए मिला है, और हमें अत्यंत ही गंभीरता पूर्वक अपने इस मनुष्य जीवन में ये देखना चाहिए, क्या हम अपने भगवान के साथ उस संबंध को पुनः निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हम भी धृतराष्ट्र की तरह अपने पुत्र, अपने पितृ, अपने भाई, अपने सहृदयों, इन सबके संरक्षण के आश्रय पर जी रहे हैं? परंतु जिस प्रकार आज धृतराष्ट्र अकेला है, सब छोड़ के चले गए, अब उसके पास कोई संरक्षण नहीं है। इसी तरह यदि हम भी भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करेंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करेंगे, भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण नहीं करेंगे, तो अकेले रह जाएंगे संसार में। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सदैव अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि काल हर क्षण हमारी आयु को खाए जा रहा है। मृत्यु कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।